कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे।
कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे।
जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे।
जैसा कर्म
ओम शांति। आज हमारे बीच में आदरणीय इंदिरा बेन जी पधारे हैं, तो सभी एक हाथ की ताली से उनका स्वागत करेंगे। इंदिरा बेन जी नागपुर से निकले हुए हैं, पिछले 20 साल से बाबा के यज्ञ में संपूर्ण रुचि से समर्पित है और यहाँ पांडव भवन में 7 साल से यहाँ समर्पित है। शिल्लू बहन के ऑफिस में देश विदेश की सेवाएं देते रहते हैं और अपनी यज्ञ की मनसा सेवा की किताब पढ़ी है आपने? मनसा सेवा की किताब जो है जिसमें सकाश के द्वारा कैसे सेवा करनी है, मनसा सेवा करनी है, तो वो किताब इंदिरा बहन जी ने लिखी है। स्पार्क की एक्टिविटीज में वो अच्छी तरह से कार्यरत है। तो आज कर्मों की गुह्य गति के बारे में वो हमारे बीच में अपना टॉपिक आपके सामने रखेंगे, लाभान्वित करेंगे। ओम शांति इंदिरा बहन जी।
ओम शांति। थैंक यू बहन जी। हमारे कर्म जो है, एक बार जीवन आरंभ होता है, कर्म करना आरंभ होता है, या दूसरे शब्दों में अगर कहें जीवन का दूसरा नाम है कर्म, या अगर कर्म है तो ये पहचान है कि व्यक्ति जिंदा है ना? कर्म वही कर सकता है जो जीवंत होगा, तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। और आज भी बाबा ने हमको याद दिलाया, पहले हम हैं निराकारी कुल के, है ना, उसके बाद साकारी कुल के। तो जब हम निराकारी कुल के थे, अर्थात परमधाम निवासी थे, वहां हम निराकार रूप में थे, मतलब आत्मा के पास शरीर नहीं था, है ना, और इसलिए कर्म नहीं था। और हम सभी जानते हैं कि जब शरीर होता है तो कर्म करते हैं, और कर्म करते हैं तो संस्कार बनते हैं। यही डेफिनेशन है ना, कि संस्कार कैसे बनते हैं। मन में विचार उठता, उसको प्रैक्टिकल लाते, और बार बार रिपीटेशन होता, संस्कार का रूप ले लेता, और वो संस्कार एक चाबी की तरह काम करता, कि बाबा कहते जिस तरह खिलौने में चाबी भर दो वो ऑटोमेटिक चलेगा। तो एक बार विचार आया, उसको कर्म में लाया, उसने संस्कार का रूप लिया, अब बार बार सोचने की जरूरत नहीं है, वो मेरे से होता रहेगा। लेकिन निराकारी वतन में हम निराकारी आत्माएं कोई कर्म नहीं करती हैं, तो वहां कोई संस्कार बनेगा नहीं बनेगा। लेकिन एक एक्टर भी होता है ना, एक्टर की बात छोड़ो, इवन आप जैसे हैं, हम घर गृहस्थ में रहने वाले जो होते हैं, सोर्स ऑफ इनकम चाहिए होता है हमको, नहीं रोटी कपड़ा मकान अगर देह है तो ये बेसिक नेसेसिटीज हैं, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, उसके लिए धन चाहिए। तो धन के लिए सपोज मैंने दुकान लगानी है, भाई कुछ बेचूंगा तो कमाई होगी, तो दुकान लगाते हैं धन कमाने के लिए। लेकिन वो दुकान जो धन कमाने के लिए लगानी है, उस दुकान को लगाने के लिए पहले मुझे धन चाहिए, जिसको हम लागत कहते हैं, है ना। दुकान लगा रहे हैं धन कमाने के लिए, लेकिन उस दुकान को लगाने के लिए पहले भी धन चाहिए, जिसको हम कहते हैं मेरी मूल प्रॉपर्टी है, मेरी निजी पूंजी है ये। और बाद में वो निजी पूंजी लगाकर जो हमने कमाया वो मेरी कमाई होगी, और पहले वाली क्या होगी, निजी पूंजी होगी। तो हम भी निराकारी वतन में रहने वाली आत्माएं, बाबा ने कहा निराकारी कुल में हम हमेशा तो नहीं रहेंगे ना, हर आत्मा यहां उतरेगी जरूर। मोक्ष जो भक्ति मार्ग में मोक्ष का कंसेप्ट है, बाबा ने उसको कह दिया वैसा कुछ होता नहीं है। हाँ, कोई आत्मा लंबे सा काल तक वहां रुके वो हो सकता है, पर सदा ही वहां निराकारी कुल में बनी रहे ये संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है कि वहां रहे हम हमेशा, क्यों नहीं संभव है? हम चैतन्य आत्मा है, तो क्या है चैतन्य है तो, हाँ, पार्ट, हर एक को पार्ट बचाना है एक का। तो वहां हम बैठ नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हमारे पास कर्म करने का संस्कार है, यही है ना। हाँ, लॉ नहीं कहता वो, क्यों नहीं कहता? क्योंकि आत्मा एक्टर है, तो एक्टर को एक्टिंग करना ही है, मतलब वो एक्टर है। क्यों बोल रहे हैं? एक्टिंग का संस्कार है, इसके लिए एक्टर बोल रहे हैं ना। आज अगर मैं किसी को कहूँ ये डॉक्टर है तो क्यों डॉक्टर कह रहे? डॉक्टरी का संस्कार है। किसी को मैं कह रही हूँ ये लॉयर है तो क्यों कह रहे? वो संस्कार है अंदर में। तो आत्मा एक एक्टर होने के नाते कर्म करने का संस्कार है, लेकिन वो कर्म करने के लिए जब आएगी, जैसे कहा ना दुकान लगानी है धन कमाने के लिए, लेकिन वो धन कमाने के लिए भी जो दुकान लगानी है उसके पहले भी धन चाहिए, है ना। तो एक्टर भी आएगा रंगमंच पर, एक्टिंग करेगा, किस बेसिस पर? हम सब जा सकते हैं दुनियावी रंगमंच पर एक्ट करने? पूरी संसार की आत्मा आत्मा रूप में भले एक्टर है, लेकिन साकारी फॉर्म में तो सभी उस रूप में एक्टर नहीं जिस प्रकार से अमिताभ बच्चन वगैरह है, वैसे तो नहीं है ना। तो वो वहां वाले स्टेज पे भी आखिर कौन जाता है? जिसके पास वो एक्टिंग का टैलेंट होता है, ऐसे ही होता है ना। खिलाड़ी हम छोटे मोटे सब होते हैं, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पर जब गेम होगा तो आप जाएंगे क्या वहां पे? उसके लिए स्पेशल संस्कार चाहिए ना खेलने का। तो ऐसे ही हम आत्माएं जब ऊपर से नीचे आ रही हैं, कर्म करेंगे, लेकिन कर्म करने के लिए उस कर्म के द्वारा हम क्या प्रदर्शित करेंगे? एक एक्टर भी क्या करेगा, डायलॉग बोलेगा, हाथ पैर ऐसे एक्शन करेगा, लेकिन उसकी एक टैलेंट है कि क्या उस डायलॉग के द्वारा मुझे किन गुणों को बिखेरना है, यही होता है ना। वरना बोलते तो हम भी है, हम भी बोलते हैं, हम भी चलते हैं, हम भी उठते हैं, हम भी बैठते हैं, लेकिन एक्टर में हम क्यों सराहना करते? उसमें कुछ खासियत वो प्रदर्शित करता है उसी बोलने और उठने बैठने के द्वारा। तो हम भी आत्माएं जब ऊपर से नीचे आती हैं कर्म करने के लिए साकारी कुल में, कुछ तो हम भी लेकर आते होंगे। ऐसे ही कैसे, खाली हाथ कोई जाता है क्या कहीं पे? खाली हाथ तो नहीं जाएंगे ना। तो क्या लेकर आते हैं वहां से, कौन से संस्कार? देवी संस्कार वहां से लेके आते हैं। वो निराकारी कुल है, वो निराकारी कुल है। अविनाशी अनादि संस्कार, और ये अविनाशी अनादि संस्कार ही जो हम पहला लेसन कराते हैं ना, आत्मा में पांच प्रकार के संस्कार हैं। कौन कौन से संस्कार बताते हैं? प्रेजेंट जन्म के, पूर्व जन्म के, ऐसे ही बताते हैं ना भाई। अभी एक बार तो मंच पे आ गए हम, तो हम कर्म कर रहे हैं और कर्मों के अनुसार संस्कार बन रहे हैं। लेकिन इससे पहले भी हमारे जन्म हो चुके हैं, जिसको हम कहते हैं पूर्व जन्मों के संस्कार। तो हम पांच संस्कार किस बेसिस पर बताते हैं? एक तो जन्मों को लेकर, कि जन्म है तो ही कर्म करेंगे। तो इन जन्मों को लेकर हम तीन प्रकार के संस्कार बता देते हैं। प्रेजेंट जन्म में हमें दिखाई पड़ता है कि माँ बाप से मुझे क्या मिला और किसी की संगत करने से मुझे क्या मिला, वो क्लैरिटी होती है। इसलिए हम प्रेजेंट जन्म के कर्मों को दो में डिवाइड कर देते हैं। लेकिन ऐसे ही पिछले जन्म में भी हुआ होगा ना, लेकिन पिछला जन्म अभी मेरे सामने स्पष्ट नहीं है, इसलिए उसको मैं दो में डिवाइड नहीं करके एक ही मान के चलती हूँ। कहती हूँ पिछले जन्म के संस्कार, और इस जन्म के संस्कार को दो में डिवाइड कर देती हूँ। तो ये तीन गिनती कर लेते, और इस जन्म में हम दृढ़ता रखते हैं। पिछले जन्म में भी तो रखी होगी ना, किन्हीं बातों के लिए दृढ़ता नहीं रखी होगी? किसी किसी बात के लिए तो हर एक में होती है ना दृढ़ता, ऐसे थोड़ी कि नहीं होती है। तो आज जो तीन है हमारे प्रेजेंट जन्म में, ये सारे पूर्व जन्म में भी थे, लेकिन वो क्लैरिटी नहीं है कि दृढ़ता किस बात की रखी थी, खानदान से क्या मिला था, संगत से क्या मिला था, उसको एक ही कैटेगरी में बांध दिया और कहा पूर्व जन्म के संस्कार, और इस जन्म को तीन में बांट दिया। वरना देखा जाए तो वो इस जन्म का संस्कार है वो तीनों भी, मतलब है तो क्या, जन्म लेकर किए जाने वाले संस्कार है वो सब। तो अगर इन चार को हटा दिया जाए, बाकी कौन सा संस्कार बचता है, पांचवा जो हम बताते हैं, आत्मा के अपने मूल संस्कार, अनादि संस्कार। और वो सब पता है क्या बताते हैं आत्मा के अनादि संस्कार, मूल संस्कार? शांति, प्रेम, खुशी, आनंद, शक्ति, ज्ञान, ये सब आत्मा के पवित्रता मूल संस्कार। अंग्रेजी में बहुत अच्छा शब्द देते हैं कोर प्रॉपर्टी, गुणधर्म। सूर्य जो है, सूर्य की भी कुछ कोर प्रॉपर्टीज होती है ना। सूर्य का कर्म क्या है? सूर्य का कर्म क्या है? रोशनी देना और गर्मी देना, ये उसका कोर प्रॉपर्टी है, ये उसका मूल स्वभाव है, ये उसका मूल गुणधर्म है। तो आंसर तो राइट आया कि सूर्य का कर्म है प्रकाश देना और गर्मी देना। लेकिन जब हम कहते हैं ये जो सूर्य का कर्म है गर्मी देना, लाइट देना, ये उसका मूल स्वभाव है, इसका अर्थ क्या होता है? ये उसकी कोर प्रॉपर्टीज है, ये इसका निजी गुणधर्म है, क्या अर्थ होता है इसका? कभी बदलता नहीं, वो सदा सदा उसके साथ रहेगा, उसके उस गुण को कोई कभी छीन नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। धरती पर चाहे भूकंप फट जाए, चाहे आसमान में बादलों काले काले बादल आ जाए, उसको ढक सकते हैं, परंतु उसकी गर्मी और उसकी रोशनी को खत्म नहीं कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही ये जो हमारे अनादि संस्कार है, अविनाशी संस्कार है, इनको लेकर हम आत्मा एक्टर नीचे उतरी कि हम एक्ट करेंगे और एक्ट के द्वारा हम इसको एक्सप्रेस करेंगे, और वही जाके फिर क्या बना, क्योंकि हमने एक्ट किया, कर्म में लाया, तो फिर वो कर्म संस्कार बना, तब फिर उसको कहा वो दैवी संस्कार, तब उसको कहा वो आदि संस्कार। आज बाबा ने साइकिल रिपीट करवाया ना, अपने आप से बातें कैसे करनी है, हा? हम पहले कहाँ थे, हा? मूल वतन से फिर नीचे आते हैं, स्वर्ग में आते हैं, सत्युग में हम सतो प्रधान होते हैं, फिर त्रेता में हम सतो बनते हैं। बताया ना बाबा ने तीनों अंग्रेजी में नाम उठाया, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन। हाँ हाँ, तो ये हम चक्र घूमते हैं। तो हम पहले पहले जब धरती पर आए उसको कहा स्वर्ग, उसको कहा गोल्डन एज, वो आदि का समय था। इसलिए उस समय जो हमने कर्म किए और उन कर्मों से जो संस्कार बने उसको नाम दिया आदि संस्कार। क्योंकि उस पहले जन्म में, जैसे आज की डेट में हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास पूर्व जन्मों के भी संस्कार है, ये कह रहे हैं ना, लेकिन उस पहले जन्म में पूर्व जन्म के संस्कार थे तो क्या थे? सिर्फ और सिर्फ वो अनादि संस्कार थे और कर्म करने का संस्कार, कि जिस कर्म करने के संस्कार से, क्योंकि आत्मा जब कोई भी कर्म कर दिया उसके पहले विचार करेगी ना, मन में थॉट आएगा, तो मन में कोई भी विचार जो उठता है उसका फाउंडेशन क्या होता है? आज की दुनिया में हम कहते हैं दो तरीके से मन में विचार उठता है ना, एक अंदर में जो स्टोरेज है संस्कारों का वहां से उसमें आएगा कुछ, या बाह्य दुनिया से इन इंद्रियों के माध्यम से जो अंदर जा रहा है। तो ये बीच में मन है, इधर अंदर से भी उसको इनपुट मिल रहा है, बाहर से भी उसको इनपुट मिल रहा है। इसके आधार से ये मन जो है वो क्या करता है, विचार पैदा करता है और उसको जाके कर्म में लेकर आता है। तो जब पहली बार उतरे थे तो अभी बाह्य इनपुट तो इतना नहीं था, साथ में क्या लेकर आए थे, अविनाशी संस्कार। तो मन में उठने वाला विचार में किसका फोर्स ज्यादा होगा, अंदर का। तो अंदर तो वो अविनाशी संस्कार, अनादि संस्कार, प्रेम के, शांति के, खुशी के। इसलिए हमने जो कर्म किया उसके द्वारा क्या एक्सप्रेस किया, हमने सुख शांति को एक्सप्रेस किया और वही कर्म जाके फिर संस्कार का रूप लिया और उसको हमने कहा हमारे आदि संस्कार। मतलब आदि में जो कर्म किए उसके आधार से। लेकिन जब हम सत्युग में आए तो सभी की सभी आत्माएं कोई भी पूर्व जन्म का लेकर नहीं आई थी, सिर्फ और सिर्फ क्या लेकर आई थी, अनादि संस्कार लेके आई थी। और इसलिए उस युग में किसी के प्रति भला करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किसी के प्रति कोई भला अच्छा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हर कोई क्या कर रहा था, अपनी पूंजी लेकर आए और उसको एंजॉय कर रहे थे। और इसीलिए वो कर्म, हमारा बाबा ने कहा उस कर्म के आगे अशब्द लगा दो, अकर्म। अर्थात वो कर्म तो किया पर कमाई कुछ भी नहीं हुई, कमाई कुछ भी नहीं हुई और उसमें बुराई भी कुछ नहीं हुई, क्योंकि सभी के सभी क्या आ रहे थे, अविनाशी संस्कार लेके आ रहे थे, अनादि संस्कार लेकर आ रहे थे, तो सभी एंजॉय कर रहे थे ना। तो किसी के साथ मेरे को ईर्ष्या द्वेष रखने की भी कोई जरूरत नहीं थी। पिकनिक में जब जाते हैं हर कोई साल भर जो कमाई करता है वो जाके एंजॉय करने के लिए जाता है। अब जिसकी जेब जितनी ज्यादा भरी होती है वो उतना ज्यादा पिकनिक में एंजॉय करता है ना। वो सोचता है मैं फ्लाइट में जाऊंगा, किसी की जेब छोटी है कहता मैं ट्रेन में जाऊंगा। पर सब क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं, बुरा कुछ भी नहीं कर रहे ना, सिर्फ खा रहे, अपनी ही कमाई का खा रहे। जिसको ही हमने कहा हम अपना जो पुरुषार्थ हमने संगम पर किया उसका जाकर हमने फल खाया, और उस फल खाने को भोगना भी कह सकते हैं, भोग हम भोग रहे थे ना, लेकिन गलत अर्थ में उसको दुनिया में कह दिया कि देवी देवताएं क्या थे, भोगी थे। जैसे निराकार की भी डेफिनेशन दुनिया वालों ने अलग कर दी ना, कि दुनिया वालों ने कहा निराकार माना जिसका आकार ही नहीं, लेकिन बाबा ने आकर क्या कहा, निराकार माना आकार तो है लेकिन ये साकार आकार नहीं है उसका। ऐसे ही भोगी माना भी दुनिया की दृष्टि से भोगी माना जो ऐशो विलास में डूबे रहते हैं, परंतु देवी देवताओं ने अपनी जो मेहनत की संगम पे बाबा के साथ याद करके, वो जो पूंजी जमा की वो जाकर हम खा रहे थे, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, भोगी रहे थे ना हम। अगर वो उस रीति से भोगी होते तो देवताओं की आज पूजा क्यों होती, भोगी की थोड़ी कोई पूजा करता है, भोगी में थोड़ी ओरा होता है, देवताओं को तो हम ओरा दिखाते हैं। तो हमने सिर्फ उस रीति से जो दुनिया कहती है वो भोगी नहीं थे, लेकिन हमने जो कर्म की पूंजी इकट्ठी की थी वो जाकर हम वहां पे खा रहे थे। अब वो जब खा रहे थे ना, तो अविनाशी संस्कार लेकर आए और वो तन में आकर कर्म किया और उसको यूज करते गए, तो यूज तो करते गए लेकिन उसके ऊपर अब ये वाले संस्कार भी चढ़ने लग गए। कर्म के द्वारा जो संस्कार बना, भले वो अच्छा संस्कार था, पर वो उसके ऊपर क्या होता गया, चढ़ता गया। और इस कारण से जो हमारी 16 कला संपूर्ण स्टेज थी, जो कहा कि पूनम का चांद कितनी रोशनी बिखेरता है, आत्मा उतनी रोशनी बिखेर रही थी, लेकिन वो संस्कार के ऊपर दूसरी लेयर जो चढ़ी आती संस्कारों की, वो उसकी रोशनी को धीरे धीरे क्या करने लगी, कम करने लगी। और वो कम करते करते बाबा ने कहा, दो युग तुम्हारे बीते, तुम 8 कला वाले बन गए, द्वापर युग में आ गए। और वो कम करते करते रोज दृश्य, क्योंकि रोज हम एक दूसरे के कांटेक्ट में किस तरीके से रहे, भले सोल कॉन्शियस थे लेकिन देह को भी देख रहे थे रोज। तो ये संस्कार देखने का, देह के साथ इंटरेक्ट होने का, ये भी तो मजबूत होता जा रहा था। और वो धीरे धीरे जो उसके ऊपर चढ़ रहा था, ये धीरे धीरे ये मजबूती पकड़ रहा था ऊपर वाला संस्कार, और नीचे वो जो अविनाशी संस्कार धीरे धीरे क्या कर रहा था, वो अविनाशी है वो उतना ही रहेगा, हाँ, संस्कार चढ़ रहा था ना, लेयर चढ़ रही थी ना। एक सीडी में पहले से ही गीत भरे हुए हैं, आप ओवरराइट कर रहे हैं ना, तो दूसरा भरते जा रहा है ना। एक कॉपी पेन लेके मैंने कॉपी पर लिखा, अभी मैं और भी कुछ लिख रहा हूँ, मेरे पास वही जगह, मैं उसके ऊपर लिखे जा रहा हूँ, उसके ऊपर लिखे जा रहा हूँ। तो नीचे आपने देखा है हिस्ट्री हॉल में ब्रह्मा बाबा की लिखत लेटर लिखा है, और सभी जानते हैं जब ब्रह्मा बाबा की कहानियां सुनाते हैं कि ब्रह्मा बाबा बड़े बड़े अक्षरों में लिखते थे, और वो थोड़े जो हैंडराइटिंग होती थी थोड़ी कर्सिव होती थी, मतलब जैसे हिंदी में भी हर एक की अपनी अपनी होती है ना, कि सब लोग पढ़ नहीं पाते हैं। तो ईशु दादी फिर क्या करती थी, उसी के ऊपर लिखती थी ना। तो ऐसे ही तो हुआ, हमारे अविनाशी संस्कार जो थे उसी के ऊपर तो दूसरी लेयर चढ़ी ना, और उसी के ऊपर दूसरी लेयर चढ़ी होने के कारण ऊपर वाली स्मृति मजबूत होती जा रही थी, नीचे वाली स्मृति वो संस्कार में कमी नहीं आ रही थी, उसकी जो स्मृति थी क्योंकि दब रही थी ना, वो स्मृति कमजोर हो रही थी। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, स्मृति में समर्थी है। तो हमारी स्मृति कौन सी बढ़ रही थी, हर दिन एक्टिंग में आ रहे थे ना एक दूसरे के साथ, देह के साथ। और ऐसा करते करते दो युग तक हम फिर ये भूल ही गए कि हम आपस में आत्माएं इंटरेक्ट कर रही थी। क्या याद आ गया अचानक से, एक सेकेंड लगा होगा उस समय, क्योंकि लंबे काल तक सिर्फ स्मृति कमजोर होती गई, लेकिन वो एक क्षण आया होगा कि जहां पर एक क्षण में हमारी स्मृति ने पलटा खाया और हमने आत्मा आत्मा से इंटरेक्ट होने के बदले शरीर शरीर से इंटरेक्ट हुआ। और अब जो संस्कार बनेंगे वो कैसे होंगे, पहले सिर्फ अविनाशी संस्कारों को कर्म में यूज कर रहे थे, अब तो दब गए ना, भूल ही गई ना मैं आत्मा हूँ, अब कौन से संस्कार यूज करेंगे? देह के आधार पर। और बाबा ने कहा यही नींव बनती है हर कर्म जो बॉडी कॉन्शियस में किया गया, उसको क्या कहते हैं बाबा? वही विकर्म है। और वो बॉडी कॉन्शियस में करते करते हम कलयुग एंड तक आए और वो विकर्म की लेयर ऊपर ऊपर चढ़ती गई, इतनी चढ़ती गई कि हम अपने ही असली स्वरूप को भूल गए। लेकिन इस पूरे दौरान में द्वापर से लेके कलयुग के अंत तक भल हमने विकर्म किए जिसको हम पाप कर्म भी कहते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पाप कर्म थोड़े किए, पुण्य कर्म भी किए। क्योंकि धीरे धीरे बाबा ने कहा ना आठ कला में आ गए थे ना, तो अभी प्रकाश तो अभी भी था लेकिन वो अंदर तक सीमित था, बाहर बिखर के नहीं आ रहा था, ऐसा ही था ना। देवी देवताओं का दिखाते हैं ना, बाबा कहते दो युग के बाद तुम्हारा वो पवित्रता का ताज क्या हो जाता है, चला जाता है, लेकिन आठ कला तो अभी भी है ना, मतलब वो बाहर नहीं निकल रहा है प्रकाश, अंदर तक अभी भी सीमित है। तो जैसे पहले ही कहा कि विचार कैसे उठता है, अंदर जो स्टोरेज है वहां से भी इनपुट मिलता है मन को, और बाहर से जो देख रहे हैं वहां से भी मिलता है। तो अभी दो चीजें हो गई अंदर में, पहले सिर्फ एक ही चीज थी, अभी दो चीजें हो गई अंदर में। तो कभी वो देह के आधार पे विचार उठता है और कभी वो जाने अनजाने वहां से भी उठ जाता है। तो जब दो, इसीलिए कहा द्वापर युग, और जब दो बातें होती हैं तभी पाप और पुण्य की बात उठी, तब भी हम कर्म ही कर रहे थे, लेकिन दो क्यों डिवीजन हो गया उसका, कि अब कौन सी कॉन्शियसनेस के साथ उठ रहा है विचार, उसके आधार से एक बन गया पाप कर्म और एक बन गया पुण्य कर्म। और चूंकि अभी जस्ट बाबा कहते हैं कि शुरुआत हुई थी बॉडी कॉन्शियस में, अभी जस्ट प्रवेश किए थे, तो वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा था, इसलिए शुरू में पाप कर्म ज्यादा नहीं थे, शुरू में पुण्य ही ज्यादा था, पाप ने तो धीरे 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 बड़ा स्वरूप लिया जिसको आज हम कहते हैं रावण, है ना। तो ये जब आज भी बाबा विकर्मों की गठरी सिर पे जो चढ़ी है, अब इसको उतारना है, यही क्या कर रही है, बोझा है जिस कारण से हम उड़ नहीं पा रहे हैं। तो अब हम क्यों, बाबा बार बार हमको कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि जब बाबा को हमने याद करना है तो उसकी भी डेफिनेशन बाबा ने दे दी है कि बाबा को जब याद करना है देह भान में रहकर नहीं याद करना है, देह से परे आत्मिक स्थिति में स्थित रहकर बाप को याद करना है। तो ये हमारे ऊपर जो लेयर चढ़ी थी ना, वो भी किस लिए चढ़ी थी? देह के कारण, देह के कारण। और इसीलिए बाबा कहता है अशरीरी होकर मुझे याद करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम शरीर टोटल ही हम उससे न्यारे हो जाएंगे, क्योंकि सत्युग में भी कर्म किया तो शरीर के आधार पर ही तो किया है, क्योंकि कर्म होगा ही तब जब शरीर होगा, वरना बाबा कहते हैं अगर स्वर्ग में भी, सॉरी मूल वतन में भी बैठे रहेंगे, भले वहां पे बाबा के करीब भी होंगे लेकिन एहसास थोड़ी होगा वहां पर कुछ भी। तो मजा तो तब है जब जीवन में है, तब कर्म करते हैं। तो शरीर से अलग होना मतलब वो कॉन्शियस रहना कि मैं किस स्थिति में स्थित होकर कर्म कर रही हूं। पहले वो ऑप्शन नहीं थे दो, सत्युग त्रेता तक ऑप्शन ही नहीं थे दो के, बाद में दो ऑप्शन खड़े हो गए ना कि मेरे पास अविनाशी संस्कार भी है और मेरे पास आदि अनादि भी और आदि भी, अब दोनों आ गए। और फिर बाद में हमने आदि भी जो चढ़ाए वो भी अच्छे ही थे, कोई बुरे नहीं थे, लेकिन बाद में जिसको बाबा कहते हैं मध्य के संस्कार, आदि संस्कार देवताई संस्कार, मध्य के संस्कार देहभान के संस्कार, रावण के संस्कार, अब ये दो चढ़ गए हैं। और इसलिए अभी हर कर्म करते समय मुझे, मेरे पास दो ऑप्शन हमेशा रहती है कि ये कर्म मैं किस कॉन्शियस में करूं। आज हमारे सामने कुछ घटनाएं घटती रहती है, कर्म करते रहते हैं फल आता रहता है, कर्म करते रहते हैं फल आता रहता है। लेकिन जब हम कर्म करते हैं, देखो इंसान के पास यही विशेषता है कि विस्डम भी है तो फ्रीडम भी है, ज्ञान भी है और स्वतंत्रता भी है कि चाहे जैसे आप कर्म करो। लेकिन जब फल की बात आएगी तब स्वतंत्रता हमारे पास नहीं है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, जैसे अभी मैंने मेरे कोई कर्म किया, जब तक मुझे बाबा का ज्ञान नहीं था हम तो बॉडी कॉन्शियस में चल रहे थे ना। अभी बाबा ने आके हमको बताया दो चीजें हैं, एक बॉडी कॉन्शियसनेस है और एक सोल कॉन्शियसनेस है। बॉडी कॉन्शियस में किया गया हर बड़े से बड़ा कार्य भी विकर्म है और सोल कॉन्शियस में किया गया छोटे से छोटा कार्य भी, यहां तक कि झाड़ू भी लगा रहे हैं, वो क्या है, महान कार्य है। तो दो ऑप्शन है, जब भी मैं कार्य करूंगी मैं किस कॉन्शियस से कर रही हूं उसके आधार से कर्मों के द्वारा मेरी कमाई हो रही है या कर्मों के द्वारा मेरा घाटा हो रहा है, वो मेरे हाथ में है। तो अब हमने दो युगों तक तो कर लिए, घाटे वाले भी हमने कर डाले और उनका अभी मेरे सामने फल भी आ रहा है। किस रूप में, एक दूसरे के साथ कार्मिक अकाउंट, परिस्थितियां, कोई धोखा देता है, कोई कुछ करता है, उस समय फिर हम क्या करते हैं, बचपन से जो सीखा है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, कि इसने धोखा दिया इसलिए मैं धोखा दे रहा हूं, वैसे मेरे स्वभाव नहीं है धोखा देना, पर इसने धोखा दिया ना इसलिए मैंने भी धोखा देना है, क्योंकि क्या कहते हैं जैसे को तैसा। पर बाबा ने आके समझाया अगर ऐसा कर रहे हो कार्मिक अकाउंट को आप बढ़ा रहे हो और इसलिए इस कार्मिक अकाउंट को हम बढ़ाए नहीं, क्योंकि हमारी यात्रा भी वापसी चल रही है। ऊपर से उतरे थे सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग पार करके हम संगम में प्रवेश कर गए हैं, अब हमें कहाँ जाना है, वापस घर जाना है। तो संगम माना क्या, इधर है कलयुग के लोग और इधर है मेरे सामने सत्युग की संस्कृति, इधर कलयुग की संस्कृति, मैं बीच में खड़ा हूं, मैं बीच में खड़ा हूं, संगम माना ही बीच में खड़ा हूं। लेकिन मेरे सामने लक्ष्य है कि मेरे को यहीं बने रहना है या मुझे यहां आना है। दुनिया को ज्ञान नहीं है तो उनको नहीं पता है, लेकिन मेरे सामने दो ऑप्शन है। तो मेरे सामने दो ऑप्शन होने के कारण से मैंने क्या चुन रखा है, क्योंकि मैं संगम युग में आया हूं, माना ही मेरी चॉइस है मेरे को सत्युग में आना है। तो अगर मैं सत्युग में आना है मैंने, लेकिन इंटरेक्शन तो उन्हीं कलयुग के लोगों से ही करना है मुझे, तो सामने वाला, क्योंकि उसके सामने ये क्लैरिटी नहीं है कि एक अनादि संस्कार और एक बात का संस्कार, उसको ये नहीं पता है, इसलिए वो तो ऊपर ऊपर की जो परतें चढ़ गई है देहभान की उसी रीति से हमारे से इंटरेक्शन करेगा, कर्म करेगा, बोलेगा, सोचेगा हमारे लिए और वैसा करेगा। लेकिन मुझे क्लियर स्मृति बाबा ने दी है तो मुझे क्या करना होगा? जैसे को तैसा नहीं करना पड़ेगा। जिसको ही बाबा कहते हैं, जो तुम्हें बद्दुआएं भी देता है उसके लिए भी तुम क्या करो, शुभ भावनाएं रखो, शुभ कामनाएं रखो, उनको भी दुआएं दो। लेकिन वो इतना आसान नहीं होता है ना। तो फिर हम बाबा को कहते, बाबा आप उतर के आओ ना, आप उतर के आओ और देखो पहले बद्दुआओं को दुआ देना कितना इजी का है ना। परंतु बाबा क्यों कह रहा है, क्योंकि पूरी फिलॉसफी हमारे सामने रख दी ना, कि बच्चे ठीक है, अगर सामने वाले ने बद किया है तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए बुरा सोचता है, तुम्हारे प्रति बुरे शब्द बोलता है, तुम्हारे प्रति कुछ बुरा कर्म करता है, और आप कहो कि वैसे तो मैं नहीं करता हूँ पर उसने किया है इसलिए कर रहा हूँ, तो तुम भी क्या कर रहे हो, अपने ही विकर्मों को बढ़ा रहे हो। मतलब लक्ष्य रख रहे हो, मुझे सतो प्रधान बनना है, और कर रहे हो तमो प्रधानता का। तो कैसे लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे, लक्ष्य के। तो दुनिया क्यों कर रही है ऐसा, क्योंकि दुनिया के सामने अभी लक्ष्य नहीं है। हमारे सामने लक्ष्य बहुत क्लियर है। हर दो तीन दिन के बाद बाबा ये बात जरूर रिपीट करता है, तुम आत्माएं सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गई हो, और अब तुम्हें क्या करना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। दिया मैंने जलाया, उसमें जो धुआं निकलता है, पानी डालेंगे तो क्या होगा उसमें, हाँ छींटे भी मारेंगे तो क्या होता है, डिस्टर्ब होता है ना। और चाहिए, दिया जलाया था प्रकाश करने के लिए, तो हमने आत्मा की ज्योत जगाई है ना, प्रकाशित होने के लिए ना, अपने जीवन में अपने मन की स्थिति स्वस्थिति को स्टेबल रखने के लिए ना। लोग कई बार आके पूछते हैं, बहन जी मैं क्रिश्चियन हूँ और मुझे बाबा का ज्ञान पसंद आ गया है, लेकिन घर वालों को मैं कैसे समझाऊं, क्या मिलता है इससे, वो मुझे समझ में नहीं आता, मैं उनको कैसे कन्विंस करूं, क्या मिलता है। कई लोग आते ऐसे आके प्रश्न करते हैं। एक बहन थी, वो कहती है मैं मुस्लिम बैकग्राउंड से हूँ, अब मुझे तो ज्ञान पसंद आता है लेकिन घर वालों को क्या बताऊं कि क्या मिलता है मुझे इससे। अगर उनको कहते कि हम सतो प्रधान बनेंगे, हम देवी देवता बनेंगे, तो वो तो बात उनको जचती नहीं है ना, न क्रिश्चियनिटी को जचेगी, न इसको, मतलब किसी भी धर्म वाले को बात जचती नहीं। तो हम उनको क्या रिप्लाई दें कि हम ये राजयोग सीख रहे, हमको इससे मिल क्या रहा है। हमको इससे मिल रहा है कि हम छोटी छोटी बातों में जो डिस्टर्ब हो जाते थे, इरिटेट हो जाते थे, चोट लग जाती थी, हिम्मत हार के बैठ जाते थे, अब जब से ये आत्म ज्योत जगाई है, आत्म ज्योत जगाकर उस परम ज्योति से जब हम राजयोग मतलब कनेक्शन जोड़ते हैं, सबसे पहले तो मेरी मन की स्थिति, मेरी स्वयं की स्थिति स्थिर हो जाती है। और स्थिर जब मेरा मन हो जाता है, भले न कितनी बड़ी परिस्थिति हो मेरे सामने, वो भी क्या लगती है मुझे, छोटी लगती है। न सिर्फ छोटी लगती है, लेकिन मैं जब उसको डील करता हूँ, शांति पूर्वक डील करता हूँ, वो परिस्थिति जब आई है, दो लोगों के बीच में कुछ अनबन सी हुई है, लेकिन उसमें भी अपने अंदर में नफरत क्रिएट करने के बजाय मैं उसके प्रति भी आत्मीयता का भाव रख पाता हूँ। और वो जब मैं आत्मीयता का भाव रख पाता हूँ, जब मैं शांतिपूर्वक सिचुएशन को हैंडल करता हूँ, तो मैं सुखी हूँ ना। मैं टेंशन से अपने आप को मुक्त रखे हुए हूं ना। आजकल की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? टेंशन और डिप्रेशन। क्या अंतर है इन दो में? एक है टेंशन, एक है डिप्रेशन। इन दोनों में अंतर क्या है? देखो, गाड़ी चलाते हैं ना हम, तो गाड़ी में एक होता है एक्सेलरेटर और एक होता है ब्रेक। स्टार्टर चालू किया, गाड़ी नहीं चलती है, अभी जस्ट इंजन चालू हुई है। लेकिन जैसे ही आप एक्सेलरेटर दबाते हैं, इंजन को तेल मिलता जाता और गाड़ी आपकी गति को पकड़ती जाती है। लेकिन गाड़ी एक्सेलरेटर कुछ ऐसा दब गया है, पांव उठाने के बाद भी वो दबाई रह जाता है, तो गाड़ी आपकी क्या होती है? ब्रेक ही नहीं लग रहा है उसको, है ना? तो टेंशन है, गाड़ी स्टार्ट कर ली, एक्सेलरेटर दबाया, अब वो चालू का चालू रह गया, ब्रेक काम ही नहीं कर रहा है, ये है टेंशन। और डिप्रेशन क्या है? गाड़ी चला रहे थे, चलाते चलाते लगा नहीं चला पाऊंगा, मारा ब्रेक, ऐसा ब्रेक मारा अब चालू ही नहीं हो रही गाड़ी। यही तो है डिप्रेशन में। आप देखो क्या होता है, बहुत सोच सोच के वो इस स्थिति में आ जाता है। अब आप उसके साथ बहुत बातें करनी पड़ती है आपको, बैठ के बहुत पॉजिटिव बैठ के, ऐसा नहीं, क्योंकि वो अंदर इतना गहरा उतर गया है कि मूवमेंट ही नहीं, अभी विचार ही नहीं चल रहा है उसको। जिसको हम कहते हैं डिप्रेशन वाला व्यक्ति, खूब निराश हो जाता है, कहता है मेरे जीवन का कोई मतलब ही नहीं है, वो जीवन का अंत करने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो डिप्रेशन है, मन में जो विचार चल रहे थे उसको ऐसा ब्रेक लग गया अब चलने को तैयार नहीं। और टेंशन चीज है कि मन में जो विचार चल रहे थे, एक्सेलरेटर इतना दब गया, अब चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। लेकिन जब ये राजयोग का अभ्यास, अर्थात ही जब हम अपने आप को कर्म करते हुए सोल कॉन्शियस में लेकर आते हैं, तब कर्म करते हैं, मतलब कर्म करने से पहले तो विचार ही चलेगा ना, तो वो विचार संतुलित रह पाता है। जब चाहिए मैं एक्सेलरेटर दबाती हूँ और जब चाहिए मैं ब्रेक लगा पाती हूँ, अर्थात अपनी गाड़ी से मैं अपने गंतव्य स्थल तक सफलता पूर्वक समय पर पहुंच पाती हूँ, ये है मुझे राजयोग का बेनिफिट। भले वो नमाज आदि जो करता था वो अलग चीजें हैं, लोग क्योंकि कहते हैं ना मुस्लिम लोग, ये क्यों छोड़ दिया, ये से क्यों, वो भी करो लेकिन इसको नहीं छोड़ो, क्योंकि इससे ये बेनिफिट है जो आपको नमाज और उससे नहीं मिल रहा था। तो यही तो कर्म का आधार है, सारे कर्म का आधार हमारे मन की स्थिति क्या है। हम सोल कॉन्शियस में रहकर कर्म कर रहे हैं या हम बॉडी कॉन्शियस में रहकर कर रहे हैं, और इसीलिए बाबा ने इस सोल कॉन्शियस को यूज करना माना ही हर कर्म शुभ भावना और शुभ कामना से। कर्म माना जो हाथों से कर रहे उतना ही नहीं, लेकिन मुख से जो बोल रहे, मन में जो विचार, क्योंकि मन में भी विचार कब उठा? बाबा वहां कहते हैं आप वहां सुन्न अवस्था में रहते हो मूल वतन में, वो जब यहाँ आते हो तो मन में विचार उठता है, तो वो भी तो एक कर्म ही है। और इसलिए बाबा ने बहुत सुंदर विधि दी है कि अगर संपूर्णता की ओर बढ़ना है, अगर कहते हो कि मेरे से ज्ञान सुनाना नहीं बनता, ये नहीं बनता, वो नहीं बनता, बाबा कहते सिर्फ एक काम करो, दुआएं दो और दुआएं लो, अर्थात मन की स्थिति को आत्मस्थिति बनाए, और आत्मस्थिति में रहेंगे तो आत्मा जो अविनाशी संस्कार लेकर आई थी उस संस्कारों को यूज करेगी, मन को इनपुट वहां से मिलेगा। नहीं तो अगर उस स्थिति में नहीं है तो मन को इनपुट कहाँ से मिल रहा है, जो बाद में संस्कार बने ना कर्म के द्वारा। देवी संस्कार फिर भी अच्छे थे, लेकिन मध्य के जो बनते आए हैं और वो लेयर तो ऊपर ऊपर है ना, तो वहां से पहले उसको इनपुट मिल जाता है। और यहाँ से तो मिलता ही मिलता है, हाँ यहाँ से तो बहुत मिलता है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि आजकल हम कई बार देखते हैं कि इतना इन्फॉर्मेशन कि उस इन्फॉर्मेशन का आखिर सार क्या है वो भी नहीं पता होता है। बस ये भी मुझे पता है, ये भी मुझे पता है, ये भी मुझे पता है, पर इसका कहाँ उपयोग करना है वो भी हम भूल जाते हैं। तो कर्मों की गुह्य गति माना ही कर्म करते समय मेरी स्थिति कौन सी है, आत्मस्थिति है या दैहिक स्थिति। अगर आत्मस्थिति है तो मेरे जो अविनाशी संस्कार आत्मा ऊपर से उतरते समय लेकर आई थी वो इमर्ज होंगे। सारा ही खेल बाबा कहते हैं मर्ज और इमर्ज का है, भूल और अभूल का है, ज्ञान और अज्ञान का है। तो ज्ञान कहीं चला नहीं गया है, सिर्फ मर्ज हो गया है, दब गया है। और दब गया मतलब ऊपर दूसरी लेयर आ गई। कोयले और हीरे में क्या फर्क होता है? रासायनिक संरचना जैसे अगर कहें तो दोनों का फार्मूला एक ही है। कोयले का भी सी है, कार्बन कहते हैं ना उसको, तो कार्बन ही कोयला है, कार्बन ही हीरा है। लेकिन कोयले को हीरे तक लाने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? दबाव और समय। कोयला ही अंदर दबा 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 कालांतर में हीरे का रूप लेता है। तो कालांतर में हीरे का रूप लेता है, मतलब समय भी उसको चाहिए ना। तो अभी हमको क्या करना है? हमारे जो अविनाशी संस्कार है, जो नीचे दब गए हैं और ऊपर दूसरे वाले आ गए, जो मेरे संस्कार नहीं है, जो देहभान के संस्कार है, क्योंकि देह मेरी, बाबा कहते मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं। ये देह तो मैंने वस्त्र के रूप में धारण किया, इसलिए देह वाले संस्कार को मैं मेरे संस्कार नहीं कहूंगा। देह को हम क्या कहते हैं? प्रकृति कहते हैं। और प्रकृति माना पर प्लस कृति, कृति माना रचना, दूसरे की रचना है। ये पांच तत्वों की ये रचना है, ये मेरी नहीं है। और इसलिए इस भान में जो मेरे संस्कार तैयार हुए वो मेरे संस्कार नहीं है, वो पराये संस्कार है। मेरे संस्कार तो जो बाप के घर से जब यह मैदान में आई रंगमंच पर, वो मेरी निजी पूंजी है। तो हम वहां से दूसरे देश में आ गए ना, वो मेरा स्वदेश था, ये परदेश में आ गई, प्रकृति में आई माना परदेश में आ गई ना मैं। तो परदेश में आकर परायों ने मेरे ऊपर राज्य कर लिया, ऐसे ही हुआ ना अंग्रेजों ने। हमारा स्वदेश भारत, ब्रिटिश आए यहाँ पर राज्य किया और हमारे ही राज्य में रहकर हमको ही गुलाम बना दिया था, ऐसा ही किया था ना। तो वो भी देह हमने धारण की है, मैं तो आत्मा हूँ, लेकिन इसने ऐसा प्रभाव डाला कि मेरे ओरिजिनल संस्कारों को दबा दिया, खुद राज्य कर रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है ना। अब वो जो ब्रिटिशों ने राज्य किया था, हमारे ही देश में आकर हमको ही गुलाम बनाया, तो कितनी अंदर में पीड़ा होती थी ना। तो उस पीड़ा से छूटने का हमने क्या उपाय ढूंढा? स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार तो है, लेकिन वो अधिकार प्राप्त करने के लिए हमने किया क्या? नॉन कॉपरेशन, असहयोग आंदोलन। हम आपको सहयोग नहीं देंगे, स्वदेशी माल यूज करेंगे, आपका माल। तो अभी हमको भी क्या करना पड़ेगा? स्वदेशी माल यूज करना पड़ेगा। अगर परदेशी माल को जितना ज्यादा यूज करेंगे उतने ही गुलाम बने रहेंगे, ये पक्का है। लेकिन जितना ही उसको यूज करना छोड़ देंगे, और स्वदेशी माल मतलब ही अविनाशी संस्कारों को यूज करेंगे, उतना ही फिर ये नीचे दब जाएंगे, जिसको ही बाबा कहते हैं ना, ये ही पांचों विकार आपके दास के रूप में। बाबा ने एक मुरली में कहा है, काम वासना शुभ कामना में परिवर्तित हो जाएगी। कब? जब मैं स्वदेशी माल को यूज करूंगी, क्योंकि ये विदेशी माल है। काम वासना विदेशी माल है, स्वदेशी माल है शुभ कामना। आत्मीयता से देखेंगे तभी तो शुभ कामना आएगी ना। तो हम सब आत्मा है, या आत्मा का संस्कार हमारा अपना है, तो ये हमको माल यूज करना है। तो ये जो आत्मा के संस्कार दबे दबे है ना, अब इसको उठा के इसको दबाना है। तो कहा, कोयला दाब को सहन कर करके हीरा बन जाएगा। ऐसे ही ऊपर में जो अब ये रावण के संस्कारों की लेयर है ना, इसके ऊपर स्वदेशी माल को यूज करना माना, अब वो कर्म में यूज करे तो वो भी तो संस्कार बनेगा, अब वो उसके ऊपर चढ़ेगा और वो वाला दबेगा, वो वाला दबेगा और हीरा निखर कर आएगा। इसीलिए क्या गाते हम, सदगुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। तो हम कर्म करते समय कौन से संस्कार यूज कर रहे हैं, उसके आधार से मेरा कर्म श्रेष्ठ कर्म या फिर विकर्म बन जाएगा। लेकिन सबसे संगम युग ही एक ऐसा युग है जहां श्रेष्ठ कर्म करने की मार्जिन है। दो युगों तक हमने तो सिर्फ अकर्म किए, और बाकी के दो युगों में कभी पाप किए कभी पुण्य किए, परंतु वो श्रेष्ठ कर्म नहीं थे। श्रेष्ठ कर्म वो श्रेष्ठ कर्म होते हैं जो आत्मा को अपने ओरिजिनल स्थिति तक लेकर आए। तो वर्तमान समय संगम का श्रेष्ठ कर्म करने का, अर्थात आत्म स्थिति में रहकर, यानी हमारे अविनाशी संस्कार ही है दुआएं देना। और इसलिए मेरे जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, जिसको मैंने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होगा, आज ये व्यक्ति मेरे साथ इतना प्रेम से चल रहा है और कल यही व्यक्ति मेरे लिए जीवन में एक नौबत बन जाएगा, ऐसी परिस्थिति भी आ जाए तो भी मैंने दुआ देना छोड़ना नहीं है, अर्थात अपने स्वदेशी माल को ही यूज करना है। हमने देखा आजादी के आंदोलन में यही हुआ, असहयोग आंदोलन किया लेकिन फिर भी प्रताड़ना बहुत सहन करनी पड़ी थी, लेकिन वो एक हिम्मत, उसको ही कहा दृढ़ता, दृढ़ता रखी कि मुझे निश्चय था कि स्वदेशी माल यूज करने से, स्वराज्य रहने से ही हम स्वतंत्र रह पाएंगे, नहीं तो ये तो हमारे को गुलाम। तो यहां पर भी हमें ये निश्चय जो बाबा ने दिलाया है कि तुम अविनाशी संस्कारों को, जिसको बाबा कई बार कहते बाप के संस्कार, मेरे संस्कार सो बाप के संस्कार, आज बाबा ने क्या कहा, सिर्फ अपने विकर्मों को हल्का करना है नहीं, पूरे विश्व के विकर्मों को हल्का करने की हमें जिम्मेवारी मिली है। दीदी बता रहे थे ना, दो आंख तो खुली रहती है, बाबा ने तीसरी आंख भी खोल दी है, तो तीन आंख से तो पूरा विश्व फटाफट दिखता है ना। तो विश्व कितना दुखी स्थिति से गुजर रहा है, तो उनके भी विकर्मों का बोझा हमें उतारने की जिम्मेवारी है। मतलब ही सदा और सदा के लिए अविनाशी संस्कारों को यूज करके कुछ भी हो जाए मुझे दुआएं देना है और दुआएं लेना है। देते समय ही मैं अपने मन की स्थिति को स्थिर बना लेती हूँ। मैं देते समय ही फूल दूसरे को देते समय मेरे हाथ में उसको खुशबू मिल जाती है ना, तो मैं अच्छा विचार दूसरे के प्रति करूंगी तो पहले तो उस अच्छे विचार के वाइब्रेशन मैं खुद अनुभव कर लूंगी। मैं अच्छे शब्द किसी के लिए बोलूंगी पहले तो मेरा ही मुख अच्छा हो जाएगा। तो दुआएं दो, दुआएं लो, ये श्रेष्ठ कर्म करने की बहुत ही सहज और बहुत ही सुंदर विधि है। ओम शांति।
ओम शांति। शुक्रिया 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 इंदिरा बहन, बहुत अच्छा कर्मों की गति का साक्षात्कार हुआ ना सभी को। अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। तो इसीलिए आपको फिर से थैंक्स है, ऐसा लाभ हमें फिर से एक बार थैंक्स, बहुत अच्छी तरह से हमें अनुभव कराया। मीठी वाणी बोलते हैं तो हमारा मुंह भी मीठा होता है और कड़वी वाणी निकलती है तो दूसरे को कड़वा लगे उसके पहले हमारी जीभ कड़वी होती है, ये हम भूल जाते हैं। ना हम खुद शांत सुखी रह सकते हैं, खुशी ले सकते हैं, न दूसरे को दे सकते हैं। इसलिए बाबा हम बच्चों के ऊपर इतनी मेहनत कर रहे कि मीठी वाणी बोल रहे मनवा, मीठी वाणी बोल।